नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति ने कहा, विकसित भारत जी राम जी कानून भ्रष्टाचार और गबन को रोकने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता भारतीय पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ऊर्जा मंत्री अनिल विज और पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर दुख जताया। 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव 31 जनवरी को शुरू होगा। और रोहतक की दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के छात्रों द्वारा तैयार की गई फिल्म सृजन जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई। अब समाचार विस्तार से। संसद का बजट सत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण के साथ आज शुरू हो गया। राष्ट्रपति ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के लिए विकसित भारत जी राम जी कानून लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानून के अंतर्गत गाँव में 125 दिनों के रोजगार की गारंटी सुनिश्चित की गई है। ये भ्रष्टाचार और गबन को रोकने में भी सहायक होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि सरकार के निरंतर प्रयासों से गत 11 वर्षों में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पाने वाले देशवासियों की गिनती लगभग 4 गुना हो गई है।
सबका साथ सबका विकास का विजन देश के हर नागरिक के जीवन में सकारात्मक प्रभाव ला रहा है। वर्ष 2014 की शुरुआत में सिर्फ 25 करोड़ नागरिकों तक की सोशल सिक्योरिटी की योजनाएं पहुंच पाती थी। सरकार के प्रयासों में निरंतरता की वजह से आज करीब 95 करोड़ भारतीयों को सोशल सिक्योरिटी का कवच मिला है।
राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक दशक में 25 करोड़ नागरिकों को गरीबी से बाहर निकाला गया। गरीबों को 32 लाख नए घर मिले हैं।
पिछले एक दशक में गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बने। बीते एक वर्ष में 32 लाख नए घर गरीबों को मिले। जीवन मिशन के 5 वर्षों में 12.5 करोड़ नए परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचाया गया। उज्ज्वला योजना के माध्यम से अब तक 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को LPG कनेक्शन मिले हैं।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार की सुदृढ़ नीतियों और पहलों के कारण देश में कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि हुई है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि भारत इस दशक के अंत तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य भी निश्चित रूप से प्राप्त कर लेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ दुनिया में भारत का कड़ा रुख पेश किया है।
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व ने भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम देखा। हमारे देश ने अपने संसाधनों के बल पर आतंकियों के अड्डे को ध्वस्त कर दिया है। मेरी सरकार ने कड़ा संदेश दिया है कि भारत पर किसी भी आतंकी हमले का जवाब दृढ़ और निर्णायक होगा। सिद्धू जल समझौते को स्थगित किया जाना भी आतंकवाद के विरुद्ध हमारी लड़ाई का हिस्सा है।
उन्होंने कहा कि 2025 में भारत का रक्षा उत्पादन 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए देश में लगभग 12,000 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए गए हैं। केरल के आर्य वैद्यशाला चैरिटेबल अस्पताल के शताब्दी समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुर्वेद के योगदान और भूमिका की सराहना की।
भारत में आयुर्वेद किसी एक काल या एक क्षेत्र में सीमित नहीं रहा। हर दौर में इस प्राचीन चिकित्सा पद्धति ने जीवन को समझने, संतुलन बनाने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने का रास्ता दिखाया।
भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये समझौता भारतीय पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं और चिकित्सकों को बढ़ावा देगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर दुख जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका निधन देश और विशेषकर महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने भी उनके देहांत पर दुख का इजहार किया। कैबिनेट मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने भी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के विमान दुर्घटना में हुए असामयिक निधन पर भी गहरा दुख व्यक्त किया है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना श्रमिकों के हित में है। उन्होंने कहा कि नए कानून में मनरेगा की कमियों को दूर किया गया है और पारदर्शिता बढ़ाकर भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई है। कांग्रेस द्वारा योजना का नाम बदले जाने का विरोध किए जाने पर उन्होंने कहा,
स्कीमें दुरुस्त की जाती हैं, नाम भी बदले जाते हैं, मनरेगा का भी कई बार बदला गया। इनको दिक्कत स्कीम से नहीं है, इनको इस स्कीम के दो शब्दों से दिक्कत है। पहला शब्द विकास, दूसरा राम जी। इन्होंने कभी विकास किया गरीबी, इन्होंने उसको दूर नहीं किया क्योंकि इनकी राजनीति गरीबों से चलती है।
हरियाणा के विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव बौद्धिक और व्यावसायिक गतिविधियों को मजबूती प्रदान करेगा। आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस महोत्सव का मार्गदर्शक मंत्र प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना के अनुरूप लोकल से ग्लोबल आत्मनिर्भर भारत। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन 31 जनवरी को सूरजकुंड में इस शिल्प महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, जबकि केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस 16 दिवसीय महोत्सव का समापन 15 फरवरी को होगा। समापन समारोह में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। हरियाणा की सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी ने आगामी बजट को लेकर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में विभाग द्वारा अब तक किए गए कार्यों, बजट के उपयोग और भविष्य की योजनाओं पर विस्तार चर्चा की गई। श्रीमती चौधरी ने अधिकारियों से मिलने वाले नए बजट का नियोजन पहले से ही ठीक तरह से करने को कहा, ताकि सिंचाई परियोजनाओं, नहरों की मरम्मत, जल संरक्षण और किसानों से जुड़े कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी योजनाएं जमीन पर दिखनी चाहिए, केवल कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। रोहतक की दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के छात्रों की ओर से तैयार शॉर्ट फिल्म सृजन जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई है। यह फिल्म समारोह इस बार 13 फरवरी से 15 फरवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। 13 फरवरी को सृजन की विशेष तौर पर स्क्रीनिंग की जाएगी। यूनिवर्सिटी के फिल्म एंड टेलीविजन विभाग के अध्यक्ष महेश टीपी ने बताया कि 8 मिनट की इस शॉर्ट फिल्म को 5वें सेमेस्टर के छात्रों ने तैयार किया है। भिवानी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस युवा जागृत सेवा समिति, वैश्य कॉलेज की एनएसएस इकाई, सदाचारी शिक्षा समिति एवं जन कल्याण सहयोग संगठन द्वारा आज अमर शहीद लाला लाजपत राय का जन्मोत्सव श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाया गया। अमर शहीद लाला लाजपत राय चौक पर उनकी आदमकद प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में युवाओं, शिक्षाविदों और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने देश की एकता व अखंडता को बनाए रखने, सामाजिक समरसता को मजबूत करने तथा नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने का सामूहिक संकल्प लिया। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के भानु स्थित प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र में आज जनरल ड्यूटी सिपाही के 492वें बैच के दीक्षांत एवं शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस बैच में 24 राज्यों के 440 महिला एवं पुरुष प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण लेकर बल में शामिल हुए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राष्ट्रपति ने कहा, विकसित भारत जी राम जी कानून भ्रष्टाचार और गबन को रोकने में सहायक होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत यूरोपीय मुक्त व्यापार समझौता भारतीय पारंपरिक चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा देगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, ऊर्जा मंत्री अनिल विज और पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन पर दुख जताया। 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव 31 जनवरी को शुरू होगा और रोहतक की दादा लक्ष्मी चंद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स के छात्रों द्वारा तैयार की गई फिल्म सृजन जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए चुनी गई। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।